सबसे पहले सभी अपने को निराकार स्थिति में स्थित करेंगे। संकल्प करें, मेरे शरीर के पांचों तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए और मैं रह गई निराकार चमकती हुई मणि। सभी बैठेंगे कुछ क्षणों के लिए इस फीलिंग में। आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर कानों के द्वारा सुनती है, मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ। इस फीलिंग में रहने से हमें स्वराज्य अधिकारी बनने में मदद मिलती है। वाच बहुत सुंदर परम सौभाग्य का दिन है। लंबा समय हम सभी परमात्म वाइब्रेशंस का आनंद लेंगे। सभी अपने को तैयार करेंगे। अब हम सभी क्लासेज में कई दिन से ब्रह्मा बाबा की महिमा सुन रहे हैं। बाबा सबसे पहले स्मृति स्वरूप हुए। स्मृति दिवस उनकी संपूर्ण स्थिति की यादगार में है। सभी जानते हैं बाबा स्मृति के साथ एक शब्द यूज करते हैं, समर्थी। दोनों पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन लक्ष्य है सभी स्मृति स्वरूप हो जाएं। अब एक घंटे में हम सभी अपने को उन स्मृतियों में ले चलें जिनमें बाबा पहले दिन से ही रहे हैं, तो हमारा भी स्मृति दिवस वरदानी दिवस बन जाएगा। ये वरदानी दिवस भी है। आज के दिन बाबा वरदान देते हैं भोलेनाथ के रूप से, और अब आकर भी हम सभी को वरदानों से शक्तिशाली बनाएंगे। वरदानों से हमारी इस अलौकिक यात्रा को सरल करेंगे। मैं आप सभी के सामने एक बहुत सुंदर विजन रख रहा हूं, जो ब्रह्मा बाबा के सामने थी पहले ही दिन से। आप सभी ने बाबा की कहानियों में या क्लासेज में सुन लिया है, जैसे ही शिव बाबा इस धरा पर आए तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत सारे अनुभवों के साथ उनके संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार भी कराया। उस समय ये बात बहुत प्रचलित थी कि सुख संवतन में हम सभी का संपूर्ण स्वरूप भी है, वैसा ही हमें बनना है। अब जरा सभी सूक्ष्म दृष्टि से ऊपर की ओर देखें, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। सूक्ष्म लोक में ऊपर आकाश में सभी निहारें अपने दिव्य नेत्र से मेरा संपूर्ण स्वरूप, ऊपर है। संपूर्ण अर्थात सभी किनारे छूटे हुए हैं, केवल लाइट ही लाइट है, चारों ओर किरणें निकल रही हैं, मस्तक में आत्मा बिल्कुल अलग चमक रही है। देखें सभी अपने संपूर्ण स्वरूप को ऊपर, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। ये हमारा ही संपूर्ण स्वरूप धीरे धीरे नीचे उतरता है और मुझ में समा गया। सभी अपने को यहीं उस स्वरूप में ले आए हैं। मैं संपूर्ण फरिश्ता हूं, चमकती हुई आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं, सभी किरणों के नीचे आ जाएं, ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, हम सभी इस पर ध्यान दें। अब कुछ समय के लिए हम एक और अभ्यास करेंगे, फरिश्ता सो देवता। जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले दिन से ये स्मृति स्पष्ट थी कि मैं ये शरीर छोड़कर श्री कृष्ण बनूंगा, उन्हें शिव बाबा ने साक्षात्कार करा दिया था, हम सबको भी साक्षात्कार कराया है। तुम ये शरीर छोड़कर दिव्य शरीरधारी संपूर्ण पवित्र देवता बन जाओगे, महान देवता, पूजनीय देवता, संपूर्ण पवित्र और सर्वगुण संपन्न देवता। तो जैसे बाबा इस स्मृति के स्वरूप बन गए थे, बहुत स्मृति रहती थी कि ये शरीर छोड़कर मैं श्री कृष्ण बनूंगा, हम भी इस स्मृति को बढ़ाएंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार भी बाबा ने ड्रिल कराई थी कि नई दुनिया में पहुंच जाओ, क्योंकि उस दुनिया में हम लंबा काल होकर आए हैं, वहां के संपूर्ण संस्कार, फीलिंग्स, स्मृतियां हमारे अंदर समाई हुई हैं। यदि हम उसे याद करेंगे तो वो सभी जीवन में आ जाएंगी। फरिश्ता क्या है? आत्मा योग अभ्यास करते करते, कर्मेंद्रियों को जीतते हुए, अपने सभी विकर्मों से मुक्त होते हुए, जब बिल्कुल लाइट हो जाती है, तब उसका ये स्थूल शरीर जिसमें स्थूलता है वो भी बहुत हल्का हो जाता है, और ऐसा महसूस होने लगता है कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में ही विराजमान हूं। ये शरीर हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का निर्माण है। हम श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, पवित्र संकल्प करते हैं, शक्तिशाली संकल्प करते हैं, संकल्पों की लाइट, संकल्पों के वाइब्रेशंस इस शरीर में प्रकाश के शरीर का निर्माण कर देते हैं। हम दो शरीरों में हैं। अब सभी अभ्यास करेंगे, स्थूल शरीर जैसे हमने छोड़ दिया, और मैं आत्मा रह गई प्रकाश के शरीर में। संकल्प दें मैं फरिश्ता हूं। डबल लाइट हूं, सिर के चारों ओर लाइट का ताज है, अंग अंग से चारों ओर लाइट फैल रही है, अब मैं आत्मा इस देह को छोड़कर प्रवेश करती हूं अपने देव शरीर में। सभी अपने को दिव्य शरीर में देखें, पहले जन्म में चलें, सिर पर डबल ताज, सर्वगुण संपन्न सिंहासन पर विराजमान। संपूर्ण इस दैवी शरीर से निकलकर पुनः फरिश्ते के शरीर में चेंज करें अपनी ड्रेस। मैं लाइट के शरीर में हूं, मुक्त हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। केवल लाइट ही लाइट, इस फरिश्ते की चमकीली ड्रेस से निकलकर पुनः भविष्य में देव स्वरूप में स्वर्ग में, जहां चारों ओर प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य है, सब कुछ संपूर्ण, मेरा पहला जन्म, ओम शांति। हम सभी आज भी बाबा से ईश्वरीय सुखों से अपनी झोली भरेंगे। सभी ब्राह्मणों को बहुत अच्छा अनुभव है, ईश्वरीय सुख सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने अपने को ईश्वरीय सुखों से भरपूर कर लिया, उसको लगता है जीवन सफल हो गया। हम बाबा से योगयुक्त होकर ईश्वरीय सुख पाते हैं, उसके साथ रहने में ही ईश्वरीय सुख है। बाबा का एक महावाक्य सभी याद करके अपने को उसकी याद में मगन करेंगे। बाबा कहते रहे हैं, बच्चे तुम सभी देवताओं के साथ भी 2500 साल तक रहे, मनुष्यों के साथ भी तुमने 2500 साल रहकर देख लिया, अब थोड़ा सा समय मेरे साथ रहो। अपने को ये संकल्प दें, कितना सुंदर अवसर है भगवान के साथ रहने का, उसके संपूर्ण सुख स्वयं में समा लेने का, जो कुछ उसके पास है वो स्वयं में भर लेने का। बाबा मुरलियों में कहते रहे हैं, मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूं। कितने अच्छे शब्द हैं, सार गर्भित। सभी अपने को ये सुंदर संकल्प दें, बाबा अपना सब कुछ देकर खाली होकर वापिस जाएगा, उनसे सब कुछ मैं लूंगा। तैयार हैं आप इस संकल्प के लिए? हाथ उठाएं जो सोचते हैं। देने वाला कह रहा है, मैं सब कुछ देकर खाली होकर जाकर विश्राम करूंगा। कौन खाली करेंगे उसे? हम सब। ऐसे ऐसे संकल्पों से स्वयं को बाबा के साथ रखकर ईश्वरीय सुखों से भरपूर करना है। साथ साथ मैं आप सभी का ध्यान बाबा की उन कुछ धारणाओं की ओर ले चलूं जो हमें सहज योगी बनाते हैं। योग कठिन क्यों हो जाता है किसी भी मनुष्य का? सबसे पहली चीज है कर्म क्षेत्र पर मनुष्य निष्काम और निर्लिप्त नहीं रह पाता। हम क्योंकि निरंतर कर्म क्षेत्र पर उपस्थित हैं, कर्म का प्रभाव हमारे संकल्पों को अपने वश में करता रहता है। जिसने ये कला सीख ली कर्म के प्रभाव से परे रहना, कर्म कॉन्शियसनेस से परे रहना, तो ये बहुत बड़ी कला है। कर्म तो हर मनुष्य कर रहा है, पशु पक्षी जानवर भी कर रहे हैं, निरंतर कर्म हो रहे हैं। पर जो ज्ञानी आत्माएं हैं उन्हें ये कला सीख लेनी है, कर्म कैसे निमित्त भाव से किए जाएं, कर्म आत्मा को उलझाए नहीं। इसके लिए एक बहुत सुंदर धारणा बाबा के द्वारा बताई गई, निष्काम भाव से कर्म करने की प्रैक्टिस हो। जीवन निस्वार्थ होता चले, भावनाओं में निष्काम भावना बढ़ती चले, कर्म जिम्मेदारियां जीवन में आई हुई समस्याएं सभी को सुलझाते हुए निष्काम भाव अपनाएं। जो भी हम कर्म करें वो बाबा के लिए हो। संसार में तो इस बात को कोई जानता नहीं, यद्यपि निष्काम शब्द बहुत जगह आ गया है भक्ति में कि हमें निष्काम रहकर कर्म करना है, लेकिन निष्काम रहकर ये संकल्प आवश्यक है कि हम जो कुछ करते हैं वो बाबा के लिए करते हैं, हमारा हर कर्म बाबा के लिए हो, उसको समर्पित करने जैसा हो, इस फीलिंग के साथ हो कि वही हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म करा रहा है। चाहे हम छोटे छोटे कार्य भी अपने घरों में करते हों, यदि वो इस फीलिंग में रहकर किए जाते हैं तो वो महान और दिव्य कर्म बन जाते हैं। तो एक धारणा जिस पर हम सभी ध्यान देंगे, निष्काम भाव। दूसरी सुंदर धारणा जो बाबा के जीवन में पहले दिन से आ गई, निष्काम भाव भी बाबा के जीवन में बहुत प्रत्यक्ष रूप में दिखता था। दूसरी धारणा है समर्पण भाव। जब हम समर्पणता की बात करते हैं तो हरेक सुनने वाला सोचता है कि धन को समर्पित कर देना है, और सारे धन को समर्पित कर देना तो संभव नहीं है। जो भाई बहने ग्रस्त में रहते हैं वो इस संकल्प को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम तो समर्पित हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा परिवार है, हमें धन परिवार के लिए चाहिए, और ये तो सत्य है। समर्पण भाव अपना लेना है, सब कुछ तेरा। उसमें बात केवल तन मन धन की नहीं, बहुत सूक्ष्म समर्पणता है बुद्धि की, मन से भी कहीं अधिक समर्पणता सूक्ष्म समर्पणता बुद्धि की है। हमने अपनी पुरानी बुद्धि, पुराना विवेक, पुरानी बुद्धिमत्ता, पुराना ज्ञान सब समर्पित करके दिव्य विवेक अपनी बुद्धि में भर लिया हो। हमारी बुद्धि क्योंकि मन का संचालन करती है, हमारे मन की ऐसी दिशा हो गई हो जो हमारा मन हमारे लिए सुखकारी हो जाए। इस एक छोटी सी बात पर सबको ध्यान देना है कि हमारा मन, उसमें चलने वाले विचार संकल्प हमारे लिए सुखकारी है, दुखकारी, परेशान कारक है, टेंशन पैदा करने वाला है या हमें शक्तिशाली बनाने वाला है। हम अपने मन के विचारों को सुखदायी बना लें। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में इतना सीख ले कि केवल संकल्प से ही तो ये सब कुछ चल रहा है, हम क्या सोचें और क्या न सोचें, इसका यदि आत्मविश्लेषण किया जाए, अपनी दिनचर्या को देखकर, अपने कार्यों को देखकर जरा लिखकर विचार किया जाए कि हम ये सोचते हैं, ये न सोचकर जरा ये सोचकर देखें, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। हमें समर्पित करने हैं अपने संपूर्ण कर्म, कर्मों का परिणाम, देह के संबंध और मन के सारे बोझ भी। ये समर्पणता है। जैसे मन और बुद्धि की समर्पणता सूक्ष्म है, वैसे ही कर्म के परिणाम को समर्पित करना भी सूक्ष्म है। कर्म भी तेरे लिए और उसका परिणाम भी तुझको अर्पित, बहुत ऊंची स्थिति है। जब हमें अच्छा परिणाम मिलता है तब भी हम उसे भूल जाते हैं, और जब जब थोड़ा गलत परिणाम मिल जाता है तब भी भूल जाते हैं। हमारे हाथ में निष्काम भाव से कर्म करने की शक्ति है और विवेक है, हम उसका प्रयोग करें और कर्म के परिणाम को शिव बाबा पर समर्पित करते चलें। इन दो धारणाओं पर विशेष रूप से सभी को ध्यान देना है। लेकिन तीसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल और हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत यूजफुल, सबके जीवन से जुड़ी है, जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं उससे व्यर्थ बातों से मुक्त रहना होगा। बातों में भी बहुत रस है और बाबा की याद में उससे कई गुना ज्यादा रस है, लेकिन जहां बातें हैं वहां बाबा की याद नहीं। हर एक अपने से पूछे और अपने को निश्चित करके एक संकल्प दे, मुझे क्या प्रिय है, बातों में रहना या बाबा के साथ रहना, क्या लक्ष्य है मेरा। सभी अपने को संकल्प दें, बातों में रहना या बाबा के साथ रहना। बातें तो इस संसार में अनंत हैं, अनंत। हर एक की रोज की बातों के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, पर ये सभी बातें प्राय सारहीन होती हैं, अर्थहीन होती हैं। जिसको योग के सुंदर अनुभव करने हैं वो अपने से बात करके, अपने को निश्चय कराकर ये दृढ़ संकल्प कर लें कि बातों में तो हजारों साल से रहते आए हैं, अब बातों में नहीं, बाबा की बातों में रहना है, उसके साथ रहना है। तो बातों से मुक्त हुई आत्मा बाबा के साथ का बहुत अच्छा अनुभव करेगी। हम फिर से एक और सुंदर अनुभव करेंगे। अब बाबा का आह्वान, सभी बाबा को बुलाएंगे बहुत प्यार से, मेरे साथ मन ही मन रुझान करें। हे प्राणों से भी प्रिय बाबा, हम आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे। आप हमारी जन्म जन्म की भक्ति के प्यार का रिटर्न देने के लिए हमारे पास आ गए हो। तुम परम धाम में और हम नीचे, अब इस दूरी को समाप्त करके हम तुम्हें अपने सम्मुख देखना चाहते हैं। हे सर्वशक्तिमान, अपना धाम छोड़कर नीचे आ जाओ। हमारी प्यार भरी आवाज सुनकर महाज्योति सर्वशक्तिमान ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। सभी देखें, अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए शिव बाबा नीचे आ रहे हैं और नीचे मेरे सम्मुख महाज्योति ज्ञान सूर्य मेरी आंखों के सामने एक दो फुट पर उसके गुणों और शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। उसका सब कुछ मुझ में समाने लगा। अब सर्वशक्तिमान सामने से मेरे सिर के ऊपर है, छत्र छाया बनकर सिर के ऊपर मैं उसकी छत्र छाया के नीचे ये योग का अभ्यास बहुत सरल है। बाबा हम सभी को ये सुंदर अवसर दे रहे हैं कि तुम मुझे जैसे और जहां याद करोगे बुलाओगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। हम इस सुंदर अवसर का फायदा उठाएं, बाबा को अपने सामने बुलाया करें, बहुत सुंदर एकाग्रता हो जाएगी। स्मृति से संबंधित एक बात और सभी को याद करनी है। हम सभी कर्म क्षेत्र पर और युद्ध क्षेत्र पर हैं। संसार में आज तक लोग कहते आए कि किसी बड़ी सेना को हराना संभव हो सकता है, लेकिन अंदर के पांच शत्रुओं पर जीत पाना बहुत कठिन है। बाबा ने इस कठिन को सरल कर दिया है। आते ही हमें दो बात याद दिलाई, सभी अब याद करेंगे उन बातों को, बहुत गहरी फीलिंग में चलेंगे। दोनों बातें हैं, रोज बाबा की मुरली में आ रहा है आजकल भी, कल्प कल्प तुमने माया को जीता है, अपने को याद दिलाएं। ये स्मृति दिलाते हैं बाबा, इस माया को तुमने हराया है, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। याद किया करें मैं विजयी रतन हूं, विजय होने लगेगी। इसी से संबंधित दूसरी स्मृति दिलाई, तुम कमजोर नहीं शक्तिशाली हो। बाबा कहते हैं कि कोई बच्चे रूढ़िहान में बाबा को कहते हैं, बाबा ये समस्या आ गई मुझे शक्ति दो। बहुत बच्चे बाबा से शक्ति मांगते हैं, बाबा याद दिलाता है शक्ति दो नहीं शक्तियां दे दी हैं, तुम्हारे पास हैं शक्तियां, अपनी शक्तियों को पहचानो। संकल्प करें जो शक्तियां शिव बाबा के पास हैं वो सभी उसने मुझे दे दी हैं। एक मिनट लाल लाइट करेंगे, सभी इस फीलिंग में बैठेंगे, अपने को स्वीकार कराएं, मैं इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। कल्प पहले भी मैंने माया को जीता था, जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं वो सभी मुझ में हैं, मैं शक्तिशाली हूं। अंतर मन में भर दें ये मन की आवाज, ये सत्य बात, मैं सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। माया को चैलेंज किया है, काम क्रोध जैसे महाशत्रुओं पर विजय पाई है, मैं शक्तिशाली हूं। कल्प पहले भी मैंने इस माया को जीता था, अब भी मेरी जीत निश्चित है। सर्वशक्तिमान की संतान, मैं शक्तिशाली हूं। ओम शांति। याद दिलाया करें अपने को, सर्वशक्तिवान के बच्चे कमजोर नहीं होते, उसने अपनी संपूर्ण शक्तियां मुझे प्रदान की हैं, वरदान दिया है। जो शक्तियां मुझ में हैं वो अब तुम्हारे पास। स्मृति स्वरूप रहें, अपने को याद दिलाएं, केवल याद दिलाने की बात है। एक लिस्ट बना लें सभी, कम से कम 10 स्मृतियों की, स्मृतियां बहुत हैं लेकिन कम से कम 10 पावरफुल बातें जो हम भूल गए थे और हमें याद दिलाया बाबा ने, उसे लिख लें और याद किया करें। मैं आपको 2 स्मृतियों की और याद दिला रहा हूं, काम आएंगी आपको। एक तो रोज हम सुनते हैं और दूसरी बहुतों ने नहीं सुनी है। रोज बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम्हारा 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब ये शरीर छोड़ वापिस चलना है। केवल याद नहीं करेंगे, अपने इस स्वरूप को देखेंगे कि मैं आत्माएं शरीर छोड़कर वापिस जा रही हूं। शुरू से ही बाबा ने याद दिला दिया, अगर हम इसे बार बार याद करेंगे तो इसका स्वरूप बन जाएंगे, उपरांता आ जाएगी, संसार के बंधन ढीले होते जाएंगे। मैं इसी में जोड़ दूं, अनेक आत्माएं ये सोचते हैं कि हमें परिवारों में ये बंधन है, ये बंधन है, ये चीज हमें रोक रही है, वो चीज हमें पुरुषार्थ नहीं करने देती। लेकिन यदि हम इस तरह की स्मृतियों का अभ्यास करें तो बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। हमें परिवारों के बंधन को जबरदस्ती तोड़ने की आवश्यकता नहीं। स्मृतियों को अंदर रखने से जीवन के सभी बंधन स्वतः ही छूट जाएंगे। दूसरी स्मृति ध्यान से सुनेंगे, ये उन आत्माओं के लिए है तो सबके ही लिए, पर विशेष रूप से वो सब इस पर ध्यान दें जो अपने को संसार में सबसे महान बनाना चाहते हैं। 77 की मुरली का ये महावाक्य है, तुम बच्चे इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, सूर्य के समान तुम्हारा प्रकाश सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तुम आत्माएं इस धरा पर सूर्य तुल्य हो, और ध्यान से सुनेंगे, ये मान और श्यान टिमटिमाते दीपक हैं, थोड़ी सी रोशनी देते हैं। तीसरी लाइन बहुत सुंदर है, तुम इन टिमटिमाते दीपकों से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो। हमारा अपना स्वमान बहुत बढ़ा चढ़ा है, हम उस समय आ जाएं जिसे संसार में महान बनना है, वो मान श्यान के पीछे न भागें, हमारी महानताएं बहुत बड़ी हैं। इस तरह स्मृति स्वरूप होकर हम सभी बाप समान बनेंगे। आज का दिन हमें याद दिलाता है बाप समान बनने की। अब मैं थोड़ी देर में आप सभी के समक्ष वो सब बातें भी रख देता हूँ जिससे आज का मिलन सभी के लिए और सुखकारी हो जाए। मैं जानना चाहूंगा, पहली बार जो भाई बहने आए हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है, परमात्म मिलन का सुख हमारी स्थिति पर निर्भर करेगा। कोई ये सोचकर न बैठे कि बाबा ऊपर से उतरेंगे तो हमें दिखाई दे, कोई संशय को लेकर भी न बैठे कि ब्रह्मा बाबा आएंगे या शिव बाबा, दोनों आएंगे या एक आएगा। बिल्कुल स्पष्ट है बाप दादा हमारे बीच में दादी के तन में उपस्थित होंगे। इस संसार के इतिहास की सबसे महान घटनाएं हैं ये, जब भगवान इस धरा पर आता है। आप जरा कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, आसमान में चमकता हुआ सूरज यदि धरती पर उतर आए तो क्या हो जाएगा? धरती ही नहीं रहेगी। ज्ञान सूर्य जिसका वास्तविक सूक्ष्म दिव्य तेज बहुत ज्यादा है, वो जब इस धरा पर हमारे सम्मुख उतर आए तो क्या होता होगा? उसकी तरंगे, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाते हैं, बहुत शक्तिशाली एक फील्ड बन जाता है, यहाँ एक सुंदर वातावरण निर्माण हो जाता है। उसका हमें आनंद लेना है। अपने को अभी से संकल्प दें, कितना सुंदर अवसर है 3-4 घंटे भगवान के साथ बिताने हैं, जिसके एक सेकंड के दर्शन करके भक्त तृप्त होते आए हैं, उसके साथ हम अब 3-4 घंटे रहेंगे। अपने को ऐसी फीलिंग में बैठाएं कि केवल मैं हूं, बार बार जो ये अभ्यास कर लें, शरीर लोप हो गया, केवल चमकती हुई मणि रह गई। बार बार अभ्यास कर लेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी, निराकार से मिलन का आनंद इस निराकार स्वरूप में स्थित होने से ही आएगा। जितनी सुंदर स्थिति उतना सुंदर अनुभव होगा। चाहे आप कहीं भी बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, सबसे पीछे बैठे हैं, आपको यहाँ दादी का शरीर भी नहीं दिखाई देता है ठीक से, दृष्टि आप नहीं ले सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं होगा। जहाँ आप बैठे हैं, पीछे वाले टीवी के बड़े पर्दे पर बाबा को देखेंगे, वहीं दृष्टि लें आप। सामने ज्ञान सूर्य बैठकर अपनी किरणें सारे हॉल में फैला देता है। हम जितना स्वयं को उसके स्वरूप पर एकाग्र करेंगे, कहीं भी बैठे हुए सुंदर अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अपने मन में कोई ये संकल्प भी न करे कि हम दूर बैठे हैं, कोने में बैठे हैं, या बाबा ने हमारी ओर दृष्टि नहीं डाली है। हम अपनी दृष्टि को बाबा पर स्थिर करके रखेंगे। तो जितना हम सभी संकल्पों से मुक्त होकर बैठेंगे, जितना ऊंचा लेवल हमारी स्थिति का होगा, उतने ही श्रेष्ठ अनुभव हमें आज के स्वर्णिम समय पर प्राप्त हो जाएंगे। सभी अपने को ये संकल्प दे दें, ये लक्ष्य बना लें कि अब से 6 बजे से और 11 बजे तक 5 घंटे हैं हमारे पास, अब से ही हम परमात्म मिलन में बैठ जाते हैं। भले स्टेज पर हलचल हो, कोई आए जाए उठे बैठे, लेकिन हम अपनी स्थिति में मगन रहें। मोबाइल फोन बहुतों के बज जाते हैं बाबा के समय, जरा बंद रखेंगे, पर पजली बंद करें। फोन सुनने का समय तो हमारे पास सदा ही रहता है, लेकिन ईश्वरीय आनंद के समय कोई बात कानों में पड़ गई तो आनंद फीका हो जाएगा। इसलिए सभी कार्यों को समेटकर बिल्कुल यहीं रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आज कोई भी व्यर्थ संकल्प अलाओ नहीं मन में, अपने को बात करके समझा दें। आज हम और तुम दो के सिवाय और कुछ नहीं। ऐसे 5 घंटे यदि हम ऐसे सुंदर अभ्यास में और स्वरूप में व्यतीत करेंगे तो ये हमारी नेचर भी बन जाएगी। हम अभी से संकल्प कर लें कि बाबा की मुरली से कोई वरदान प्राप्त करना है, कोई भी एक सुंदर महावाक्य को वरदान के रूप में स्वीकार करेंगे। आप पाएंगे जिस महावाक्य को हम वरदान रूप में स्वीकार करेंगे वो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। अपने को याद दिला देंगे, अपने अंतर मन में सबकॉन्शियस माइंड में भर देंगे, आज से ये बात मेरे लिए वरदान है। ऐसे ही बाबा जब दृष्टि देते हैं, 10-12 मिनट दृष्टि देंगे बाबा, हम अपनी कोई विशेष कमजोरी जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हो समर्पित करेंगे। आज सभी अपने अंदर अभी से ख्याल कर लें कि मुझे आज बाबा पर ये कमजोरी अर्पित कर देनी है। सुंदर अनुभव कर सकते हैं यदि सच्चे दिल से अपनी कोई कमजोरी बाबा पर अर्पित करेंगे तो अनुभव होगा वो कमजोरी हमें छोड़कर चली गई। दादी यहाँ आएंगी, भोग के गीत बजेंगे। पहले हम बाबा को भोग लगाते हैं प्यार से, बाबा का आह्वान करते हैं, उसको निमंत्रण देते हैं। गीतों के साथ साथ प्यार से हम उसको निमंत्रण भी देते रहेंगे और अपनी उस कमजोरी का भी भोग तभी से लगा देंगे, उसके बाद दृष्टि मिलेगी, उस पर स्टैंप लग जाएगी। पर अब समझ लें कि कमजोरी का भी भोग लगा देना है। जब गीत बजते हैं, मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, गीत की लाइन के अनुसार हम उड़ के चले जाएं, अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा शरीर से निकलकर उड़ती हुई जा रही हूं ऊपर की ओर। इसको बिल्कुल सिंपल स्वरूप दे दें कि आत्मा यहां से निकलकर उड़ती जा रही है, मैं उसे देख रही हूं, ये आत्मा मैं हूं। कई सोचते हैं मैं अपने को कैसे देखूं, आत्मा उड़ती जा रही है, ये आत्मा मैं हूं, चली गई बाबा के पास, बाबा को टच किया, प्यार से निमंत्रण दो, बाबा मैं आपके पास आया हूं, अब आप नीचे मेरे साथ आ जाओ, चिटचैट करें बाबा से और देखें, फिर बाबा अब हमारे साथ नीचे उतर आता है, हमारी आंखों के सामने ज्ञान सूर्य उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। फिर अभ्यास करें, उड़ के गए बाबा के पास, फिर उसको नीचे ले आए। ये ड्रिल है, ये चिटचैट है, इससे चित्त स्थिर हो जाएगा और बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। ऐसी ड्रिल करते रहेंगे बार बार, कम से कम 10 बार करेंगे और फिर बाबा की किरणों के नीचे बैठेंगे। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होती है, दृष्टि देंगे बाबा सभी को, ध्यान देंगे सभी कि दादी जब ध्यान में जाती है तो ताली नहीं बजानी है। कोई भी भाई बहन यदि ताली शुरू करे तो उसे साथ नहीं देना है, क्योंकि अव्यक्त माहौल होता है। बहुत डीप साइलेंस में अनेक बाबा के बच्चे बैठे रहते हैं, कोई अचानक ताली बजा देता है, सब समझते हैं ताली बजाना चाहिए, शायद ये भी रस्म हो यहाँ की। ऐसी कोई रस्म नहीं है, लाल लाइट में ताली बजाना वैसे भी शोभा नहीं देता। जो विवेकशील हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि लाल लाइट में ताली नहीं बजानी है। तो बाबा दृष्टि देंगे, सभी एकाग्र चित्त होकर अपनी दृष्टि को बाबा पर स्थिर करेंगे, ऐसे अभ्यास में बैठेंगे कि सामने सर्वशक्तिवान बैठा है, उसकी किरणें निरंतर हम पर पड़ रही हैं, उसकी किरणें हम में समा रही हैं। उसके बाद बाबा मुरली चलाएंगे, सारी मुरली लिखने की आवश्यकता नहीं, सुनते हुए उसी लहर में अपने को ले चलें और सामने बैठे हुए सर्वशक्तिवान की किरणें अपने में भरते रहें। फिर दादियां स्टेज पर आती हैं, सभी आनंद लेंगे हर सीन को देखने का। मैं ये बात कहता आया हूं कि बाबा से हम सभी सदा सीखें। दादियां स्टेज पर आ गई, बाबा को भोग खिलाया जाता है, बाबा कुछ बात करते हैं, भगवान कैसे बोलता है, जब वो देखता है तो कैसे देखता है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, उसकी भावनाएं क्या हैं, जब वो खाता है तो कैसे खाता है, कर्म करता है तो कैसे करता है, उसकी अलौकिकता को, दिव्यता को हम निहारेंगे, आनंद लेंगे और इस तरह आज के मिलन को अपने जीवन के लिए यादगार बनाएंगे। ओम शांति। अभी फिर से हम बाबा का आह्वान करेंगे अपने सामने और देखेंगे ज्ञान सूर्य हमारे सामने, उसकी तेजस्वी किरणें हमारे चेहरे पर पड़ रही हैं, आत्मा में समा रही हैं।